ఓం శాంతి. పరమ సౌభాగ్య కి బాత్ హై హమ్ సబ్ బాబా కే అనన్య బచ్చే హై. హమ్ సబ్ కో బాబా నే आप समान बना रहा है, परंतु बाबा का परिचय, बाबा का बायोडेटा जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा ने हम सबको जिम्मेदारी ताज पहनाया है. भारत देश ऐसे है, सारी हिंदू गण जो है वो सभी बहुदेव उपासक है. कोई भी हो, बहुत देवता उपासना कर रहा है. आजकल के भारत में जितना पॉपुलेशन है उतना देवता मंदिर भी होगा. एक घर में कितना परिवार है, हर एक देवताओं को उपासना करने में बिजी है. एक भगवान को सबका अनुभूति कराना हम बच्चों का विशेष जिम्मेदारी भी है. दुनिया को ईश्वर कौन है, वो कैसे है, उसका रूप क्या है, उसका सच्ची एक नाम कौन सा है, दाम कहाँ है, काम क्या है, ऐसे जो भी बाबा का पहचान किसी को पता नहीं है, सिर्फ बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है. जो बाबा ने हम लोगों को सिखाया है वो बात सभी जन जन तक, जन मन तक हम लोग पहुंचाना, साथ साथ रियलाइजेशन करना. जो भी बात रियल है वो रियल बात को सबको रियलाइजेशन कराने तक अपना पुरुषार्थ जरूर होना ही है. इसी परिस्थिति में भारत में आदि में एक देव उपासना ही था. सिर्फ भगवान ईश्वर को उपासना करते थे. जब भी भक्ति युग प्रारंभ हो गया उसी समय में एकेश्वर वही एक ही था, उसको हम लोग उपासना करते थे भारतवासी. उसी समय में कोई देवता का उपासना नहीं था. उसी समय में जो भी पौराणिक जो काव्य कथा संकलन है हम समझते 18 पुराण ऐसे हम पढ़े हैं, वो कोई पुराण उसी समय में नहीं था. ऐसे भक्ति युग जब प्रारंभ हो गया कम से कम 300 बरस तक एकेश्वर उपासना ही था. ऐसे जो उपासना था तो तदनंतर क्या हुआ आप जानते हैं, बाबा कहाँ हैं? तो ऋषि मुनि लोग पुराण रचा। जब ये पुराण रचा, वो पुराण में जो जो हीरो है, हीरो देवता है, वो सभी हीरो देवताओं का टेंपल बना के हमें पूजा पाठ करने लगे। भारत में जब भी भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तब सिर्फ ज्योतिर्लिंग की ही पूजा था, उपासना था। वो ज्योतिर्लिंग के पीछे भी पुराण निकला, उधर से परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को पुराण के द्वारा मिक्स करके शिव पुराण रचा। उसको शंकर पुराण भी कहे, शिव पुराण कहे। उसको पत्नी बनाया, पुत्र को बनाया, ऐसे शंकर पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे 18 पुराण में विशेष जनमन में रामायण, महाभारत, भागवत बहुत नजदीक है। आप जानते हैं भागवत कृष्ण पुराण है, आप जानते हैं महाभारत में भी श्री कृष्ण को महान पात्र है, उच्च पात्र है। पांडवों की दृष्टि में श्री कृष्ण ही परमात्मा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पांडवों को अनेक समस्या जो थे, अनेक संकष्ट जो थे, अनेक कोई न कोई परिस्थिति में वो समाधान देते थे। इसी कारण से पांडव पति श्री कृष्ण जी बन गया। पुरुषोत्तम देवता उत्तम जो श्री कृष्ण जी ने पांडवों से गुणगान दिया, आप ही भगवान हैं, आप ही परमात्मा हैं। इसी कारण से भारत में विशेष श्री कृष्ण का मंदिर है, उसका पिछले जन्म का श्री राम की मंदिर भी है, कोने कोने में राम का कृष्ण जी का टेम्पल्स है। अपना एक बाबा का, भगवान शिव का परिचय देने का बहुत मुश्किल की काम है, क्योंकि अपना भारतवासी अभी देवताओं को संपूर्ण मान लिया है, वही भगवान है, वही भगवान है। अभी हम बच्चे ये सेवा करना है, भगवान एक है, सभी मानते हैं, परंतु वो कौन कौन है, कैसे है? तो अपना धर्म शास्त्र में 4 वेद है, 18 पुराण है, ये दोनों को समावेश करने वाला एक ग्रंथ है, वो तो श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ का गीताचार्य ने श्री कृष्ण बन गया है, व्यास महर्षि ने उनको श्री कृष्ण का पद दिया है। हम लोग भारतवासी पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, सुना के श्री कृष्ण परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण कह के आ गया है। अभी तक जो जो अतिरति महारति आचार्य त्रय हो, वो लोग भी यही ज्ञान को कृष्ण परमात्मा, कृष्ण भगवान इसे बोल के आ गया है। अभी जब भगवान आके हम लोगों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, ये नॉलेज को इजी से हम लोग समझने के लिए थोड़ा पुराण के आधार हो, थोड़ा शास्त्र के आधार हो, हम लोग लेकर ही वो अपना गलती को सुधारना अपना ड्यूटी है। ऐसे नहीं हमें डायरेक्ट बोले श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, श्री कृष्ण जी ने भगवान नहीं है, ऐसे बोले भक्त लोगों को तो बिन अभिप्राय आ जाएंगे, क्या ये ब्रह्म कुमारी अपना भारतीय धर्म को क्यों नहीं मानते हैं, ऐसे आ जाएंगे। इसलिए हमें इसी बात को, ऐसे सूक्ष्म की बात को हम लोग ऐसे इजी से सेटअप करना, वो लोगों को ठीक करना, उसी बात को उसी ग्रंथ से ही रियलाइजेशन करना, ये प्रयोग है। बाबा ने हरेक मुरली में ये बात को हम लोगों को तो स्पष्टीकरण करा रहा है। कल भी बाबा ने विशेष गीता ज्ञानदाता का भी ऊपर बताया, श्री कृष्ण जी को पांडव ने जो समझा था, तुम्हें ही परमात्मा, ऐसे एक श्लोक है कृष्ण जी को अर्जुन जी ने महिमा करता है, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे गुणगान करता है। मना हे कृष्ण, तुम ही परब्रह्म है, तुम ही परम धाम है, तुम ही अजन्म है, तुम ही विभु है, ईश्वर है, तुम ही शाश्वत पुरुषोत्तम परम पुरुष है। ऐसे जो परमात्मा का महिमा है वो सभी महिमा को ये कृष्ण का सामने गाते हैं, तुम्हें हमारे परमात्मा है। ऐसे साथ साथ अर्जुन ने कृष्ण को फिर मांगते हैं, खतम विद्या महम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे योगेश्वर कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मेरे को ये रास्ता दिखाओ, मैं आपको कौन सी भाव से मैं सदा ध्यान करूं। ऐसे कृष्ण जी को अर्जुन जी ने पूछा। जो अर्जुन जी कृष्ण जी को पूछा, ये बात को क्या श्री कृष्ण जी ने माना? तो हमें गीता को डीपली स्टडी करे तो सचमुच ये अर्थ हम लोगों को आ रहा है। श्री कृष्ण जी ने कोई कारण से खुद को ईश्वर ऐसे नहीं माना, योगेश्वर ऐसे नहीं माना, भगवान ऐसे नहीं माना, तो इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ऐसे बताया है, जो इसका मिसकंसेप्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थे, इसको क्लियर करने के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसे कहा है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवतार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्त परंथपा। हे अर्जुन, भगवान जो होता है वो अजन्म है, अज है, परब्रह्म स्वरूप है, आदिदेव है, वो शाश्वत परम पुरुष है, परंतु मैं और आप दोनों बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन, मैं और तुम अनेक जन्म प्राप्त किया है, एक जन्म नहीं है, अनेक जन्म प्राप्त किया है, परंतु परमात्मा जनन मरण से रहित है। तुम्हें अर्जुन, तुम नहीं जानता है मैं कितना जन्म लिया, तुम्हें कितना जन्म लिया, मैं सब जानता हूं। इसलिए मैं परमात्मा नहीं बन सकता है, ऐसे इनडायरेक्ट से वो तो अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। साथ साथ ऐसे भी बोला, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाह नचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, मैं और तुम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी हम लोग रहेंगे, क्योंकि आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। साथ साथ ये बात कहां चला, कुरुक्षेत्र युद्ध में चला, तो उसी समय बोला ये सभी राजा जो है वो भी पहले भी थे, आज भी है, कल भी वो लोग रहेंगे, क्योंकि ये सभी आत्मा है। इसी कारण से जो जो आत्मा जनन मरण चक्र में है वो कोई भी भगवान नहीं हो सकता है, ऐसे इसको क्लियर किया। कृष्ण जी ने अपना बात से अर्जुन की जो भूल था उसको क्लियर किया। साथ साथ इसको ऐसे बोला, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मना, आप जानते हैं जो जन्म लेता है उसको मरण शाश्वत है, जिसको मरण हुआ वो आत्मा को पुनर्जन्म शाश्वत है। ये विचार को आप चिंता न करो, क्योंकि एक टाइम जनन मरण में आ गया, उसको जनन मरण की चक्र तो अनादि अविनाशी हो जाता है, शाश्वत मुक्ति किसी को नहीं होता है, ऐसे विषय में तुम्हें चिंता न करो। ऐसे बोल बोल के कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात बताया। अब जो समझा है, मैं भगवान हूं नहीं है, वो भगवान एक है, वो अजन्म है, जनन मरण रहित है, परम ज्योति स्वरूप है, परम पुरुष है, शाश्वत है, आदिदेव है। वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा का नाम है ईश्वरा। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में 18 अध्याय में 61 श्लोक में ये बात बताया, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, इस सारी सृष्टि को अधिपति एक ईश्वर है, वो ईश्वर ने शरीर रूपी यंत्र में, जैविक यंत्र में, दैट इज बायो कार यंत्र में, जो आत्मा जनन मरण चक्र में फिर रहा है, वो फिरने का निर्देशक ईश्वर है। जो भी जीव जंतु है, मानव है, सभी जो है, वो आत्माओं का कर्म फलों के अनुसार, जो कर्म है उसके फल के अनुसार, उसको जनन मरण चक्र में जो ईश्वर के अविनाशी अव्यक्त रूप की शक्ति है, वो सब लोगों को फिरा रहा है। वही ईश्वर है, वो जो ज्ञानी है, ध्यानी है, उसका मन में विराजमान है। इसलिए तुम्हें अर्जुन, मेरे को ऐसे नहीं मानो, मैं परमात्मा हूं, मैं योगेश्वर हूं। वो तो ईश्वर है, वही है परमात्मा, वही है भगवान, वही है ईश्वर योगेश्वर। इसलिए तुम्हें ये करो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிரப்யசி சஸ்வதம். ஹே அர்ஜுன், ஜோ ஈஸ்வர் ஹே, ஓ ஈஸ்வர் கோ துமே சர்வ பாவோன் சே சரண ஹோ ஜாவ், ஓ ஈஸ்வர் நே தும்கோ பரமசாந்தி ஔர் சாஸ்வத் ஸ்தான் தேங்கே, இஸ்லியே துமே ஈஸ்வர் கே சரண ஹோ ஜாவ். ஐசே கிருஷ்ண ஜி நே அர்ஜுன் கோ மார்க்கதர்ஷன் தியா ஹே. ये सभी शास्त्र के आधार से कृष्ण जी का मुखारविंद से जो निकला है उसके आधार से हम लोग इजी से बोल सकता है सो कृष्ण जी पुरुषोत्तम है, परमात्मा ईश्वर सर्वोत्तम है. इसलिए तो हम अपना मुख से ये नहीं बोले कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसे नहीं बोले. तो क्योंकि लोग भक्त लोग हैं ना, वो लोगों को मन को असंतुष्टि होता है, इसलिए थोड़ा युक्ति से थोड़ा ध्यान से योग से सुनकर ये बात को स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण करे, वो लोग इजी से मान सकता है. क्योंकि शास्त्र की बात से शास्त्रवादियों को ही हम लोग समझाना पड़ता है, डायरेक्ट बाबा का ज्ञान वो लोग स्वीकार करने के लिए उतना स्टैंडर्ड नहीं है उसका मन और बुद्धि. इसलिए ये इजी बात को आप सभी भाई बहने तो बहुत इजी से उसको निकाल सकता है, कृष्ण भगवान नहीं है. ऐसे हमें नहीं भी बोले तो कृष्ण ही बोला है, वो तो भगवान ईश्वर है, माना ये बात ऐसे ही होता है. इसलिए हम भाई बहनों को तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, साथ साथ एक प्रदर्शनी सेट भी रेडी किया है, जो अपना प्लैटिनम जुबली प्रोग्राम थे उसी समय में हम लोग ये प्रदर्शनी डाला था, भगवद गीता का भगवान ईश्वर टाइटल है. तो कृष्ण वाच, कृष्ण ने बताया है, ऐसे एक पिक्चर सेट बनाए हैं, कम से कम 25 पिक्चर्स है. तो ये पिक्चर्स को हम लोग दिखा के लोगों को अपना बाबा का ज्ञान को इजी से स्पष्टीकरण करा सकता है. अभी भगवद गीता सभी कंटेस्ट करने का भी जरूरत नहीं है, सारी 700 जो श्लोक है उसको टच करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 5-10 श्लोक आपको मैं कंटेस्ट करा के दे देंगे. जो भी इंटरेस्टेड भाई बहने हैं तो आपका नाम दे, वो जस्ट 5-10 श्लोकस आप कंटेस्ट करके उसका ना वो मीनिंग आप लोग जानने से तो आप इजी से ही कृष्ण का बात से ही कृष्ण भगवान नहीं है ऐसे बोल सकता है. दूसरी बात ये है तो भगवद गीता में धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण, अर्जुन, ये 4 लोगों का डायलॉग है, परंतु इसके साथ साथ हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल स्टडी करें ईश्वर भी बात किया है. कृष्ण, ईश्वर, अर्जुन ये तीनों ही साथ साथ वो बात किया है. तो इसको हम लोग जानने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु उसको बाद में सोचेंगे. परंतु ये बात तो अत्यंत स्पष्टीकरण है, परमात्मा जो है वो परम ज्योति स्वरूप है, परमात्मा जो है वो जनन मरण से न्यारा है, परमात्मा जो है वो ज्ञानेश्वर है, परमात्मा जो है वो अशरीरी है, अव्यक्त है, अभोक्त है, अहिंसक है. भाई बहने आप ये जान सकता है तो अभी रहस्य में क्या हुआ, अपना कृष्ण जी को टेम्पल को तोड़ दिया, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, क्योंकि तो आप लोग युद्ध सिखाने के लिए जो बोल रहा है वो तो अपना देश में ऐसे अशांति फैलाने का जो भी आप लोगों का गीता मैसेज है हमें नहीं चाहता है. इसलिए वो लोग जो भी ट्रेडिशंस थे वो लोग तो कोर्ट में गया, कोर्ट के आदेश को गवर्नमेंट फॉलो करना ही पड़ा, इसलिए श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ दिया, जो अपना इस्कान जो बड़ा मंदिर रखा किया था उसको तोड़ दिया। इसलिए अपना जो भगवद गीता है, बाबा भी अव्यक्त बाबा भी अपना मुरली में हम लोगों को सावधान दिया है, तो बच्चे ये अहिंसक युद्ध है, हिंसात्मक युद्ध नहीं है, ऐसे आप लोग उसको सिखाओ। क्योंकि अपना जो भी भगवद गीता है वो तो बैटलफील्ड का नहीं है, वो तो मानसिक स्थिति में जो हम लोग चेंज होना है वही सिद्धांत है। इसमें भगवद गीता में ऐसे भी एक बहुत इजी समझने का, सारी बात को समझाने का एक श्लोक है, तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांस अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। ये ईश्वर का महिमा इधर बहुत गहराई से सब बात भी इधर सिद्ध होता है ये श्लोक में। कविम मना ईश्वर सर्वज्ञ है, पुराण वो तो ईश्वर अनादि है, अनुशासितारम यह सृष्टि को एक नियम रचित दिया है, अणोरणियम सहा वो परमात्मा जो है वो अणु से ही सूक्ष्म बिंदु रूप है, साथ साथ वो सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम वो भगवान सबको दाता भी है, वो तो आदित्य वर्ण है, वो सूर्य जैसे व्हाइट कलर्स रेसस है ऐसे भगवान भी तो श्वेत वर्ण की रूप में है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो है सबका अज्ञान को मिटाने वाला, सबको ज्ञान दर्शन देने वाला, ऐसे एक श्लोक है। एक दो श्लोक मानने से समझने से तो हम लोग इजी से बाबा के गुणगान को हम लोग समझा सकता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते मना आत्म ज्योतियों के ऊपर एक ज्योति है, वो है परम ज्योति परमात्मा, वो परम ज्योति है सर्व का अज्ञान को निवारण करने वाला ज्योति है, ऐसे एक विशेष श्लोक है। इसमें भगवान को ज्योति स्वरूप बोला है, आत्मा को ज्योति स्वरूप बोला है, आत्मा और परमात्मा का संबंध भी हम लोग समझ सकता है, समझा सकता है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण जी ने, आप जानते हैं श्री कृष्ण जी का भागवत जानते हैं, तो वो एक प्रिंस है, राजकुमार है, बच्चे बन के जन्म लिया है, वो सुदेव देवकी का पुत्र है, संदीपिनी ऋषि का शिष्य है, वो दो पुत्नियों को मैरिज भी किया है, रुक्मिणी और सत्यभाम को, साथ साथ 16,000 उपपत्नियां भी उसका है, तो साथ साथ वो कंस दंतवक्र ऐसे बहुत असुरों को तो वधा भी किया है, संहार किया है, वो तो कंस ये असुर नहीं है, उसका मां का ब्रदर है, हम लोग बोलते हैं उसको कंस वो असुर है, परंतु वो ऐसे है ये नहीं है, परंतु इसका नजदीक रिलेशन है। ऐसे जो भी बातें होता है वो बात को हम लोग इजी से बोल सकता है। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बात कहा, हे अर्जुन तुम और मैं बहुत जन्म लिया है, मैं जानता हूं तुम्हें नहीं जानता है, आप भी समझा है, श्री कृष्ण जी ने अपना पिछले जन्म में राम श्री राम बने थे। श्री राम माना सेम आत्मा, तो फिर पिछले जन्म में परशुराम बने थे। परशुराम ने फिर पिछले जन्म में आप जानते हैं दशावतार को वो वामन बने थे। ऐसे वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, एक ही सोल रिपीटेशन पुनर्जन्म में आया है। इसलिए जो पुनर्जन्म में आता है, जनन मन चक्र में आता है, जो राजा भी हो, प्रजा भी हो, कोई भी हो, वो तो भगवान नहीं होता है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। इतना भी हम लोग बोल सकता है, ना श्लोक चाहिए ना दूसरा दिन चाहिए। ये शब्द को हम लोग इसी से, जो भी अपना भारत के गण है, वो भक्तगण है, वो लोगों को हम लोग इसी से बोल सकता है। साथ साथ आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र युद्ध है, युद्ध के क्षेत्र को जाने के पहले श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों उधर एक महासरोवर है, उसका नाम है ब्रह्मा महासरोवर। वो ब्रह्मा महासरोवर के बीच में एक ईश्वर का टेंपल है, उसका नाम है सर्वेश्वर महादेव। तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में जाने के पहले श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों भी ब्रह्मा महासरोवर में स्नान करके सर्वेश्वर महादेव को अर्चना करके बाद में वो कुरुक्षेत्र का युद्ध में गया है। उधर इतिहास है, हमें जो बोले उधर ये बोर्ड भी डाला है उधर। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का परम भक्त है ऐसे बोलने के लिए भी अभी हमको स्थल पुराण सहाय करता है। इसलिए ये शब्द भी हम लोग याद करके वो जो भी भक्तगण है उसको बोल सकता है, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का परम भक्त है ऐसे। बाद में श्री कृष्ण जी आप जानते हैं उत्तरांचल उत्तराखंड उधर एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र का नाम है गोपेश्वर। वो गोपेश्वर क्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने स्वयं एक ज्योतिर्लिंग स्थापना किया है, पूजा किया है। क्यों किया? तो जो श्री कृष्ण जी ने कंस को वधा किया, दंतवक्र को वधा किया, जो अन्य जो भी हो वो लोगों को संहार किया, वो हत्या के कारण उसको पाप चढ़ा, वो पाप निवारण करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी ने गोपेश्वर टेंपल, गोपेश्वर में एक शिवलिंग भी स्थापन किया, तो अर्चना किया, प्रार्थना किया, अपना पाप परिहार के लिए वो भगवान ईश्वर से मांगा। ये भी स्थल पुराण है, इसलिए ये बात से ही ये पॉइंट सिद्ध होता है परमात्मा शिव है, भगवान शिव है, शिव के अनन्य भक्त है, परम भक्त है श्री कृष्ण जी। तीसरी बात यह है, तो रुक्मिणी और सत्यभामा में दो मुख्य पत्नियां हैं, इसके साथ साथ टोटली अष्ट पत्नियां उसका है श्री कृष्ण जी को। तो उसमें जाम्बवती एक पत्नी है, वो पत्नी को बहुत बरस पुत्र संतान नहीं था, इसी कारण से अपना पुराण में ये बात स्पष्ट है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र संतान नहीं होता है उसको मुक्ति नहीं मिलता, ऐसे एक वाक्य है। ये कारण से उसको चिंता लगा, जाम्बवती ने अपना पति श्री कृष्ण जी को बोला बिना पुत्र संतान मेरे को न गति है न सदगति है। इसलिए स्वयं कृष्ण जी ने हिमालय में जाकर ईश्वर का तपस्या किया, ईश्वर को प्रार्थना किया, ईश्वर जी से वर मांगा, फिर बाद में जाम्बवती को एक पुत्र संतान हुआ, उसका नाम है सांबा। ये तो भागवत में लिखा है। यह है रामकृष्ण परमहंस मठ मैसूर में एक बुक छपाया है, वायवीय संहिता। ये बात उधर भी छपाया है, छप गया है। तो इसी कारण से हम लोग जो भी अपना धर्मशास्त्र है, पुराण है, इसको आधार लेके कर प्यार से, प्रेम से, रेस्पेक्टफुली से, तो हम लोग ये सिखा सकता है श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम है, परमात्मा परमेश्वर है, परमात्मा भगवान है। साथ साथ श्री कृष्ण जी ने, आप जानते हैं श्री कृष्ण जी का पिछले जन्म जो है वो श्री राम था। श्री राम अपना पत्नी जो सीता को ऐसे परिस्थिति आ गया, वो रावण जी ने लेके गया, वो तो ये कथा आप लोग डीप से जानते हैं। परंतु अभी श्री राम ने रावण पर युद्ध करके श्री सीता माता को वापस लेके आना चाहिए, इसी परिस्थिति में, इसी संकट में वो पड़ गया। उसी समय में श्री कृष्ण जी ने, सॉरी श्री राम ने वनवास पर एक महर्षि की कुटीर में गया, उसका नाम है अगस्त्य महर्षि। अगस्त्य महर्षि को श्री राम जी ने पूछा, अभी कैसे मैं अपना सीता को पाऊं, सो रावण को हत्या करो, बिना रावण के हत्या हमें अपना सीता को नहीं ले सकता है वापस। इसी चिंता में वो अगस्त्य महर्षि से उपदेश लिया। अगस्त्य महर्षि ने श्री राम जी को बोला, हे राम, तुम्हें जो विचार किया है रावण को हत्या करने के लिए, परंतु यह असंभव है, क्योंकि रावण महाशिवभक्त है, रावण चतुर्वेद पारंगत है, रावण महाब्राह्मण है, रावण ने तपस्या करके ईश्वर से ऐसे वर मांगा है, वर पाया है, वो है अजय व्रत, अजय वर, कोई भी इसको ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आप श्री राम भी हो, आप रावण के ऊपर युद्ध करके आपको विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, इसी कारण से तुम्हें उधर नहीं जाना, रावण के ऊपर आप युद्ध में विजय नहीं पा सकता है। तो उसी समय में रावण की हत्या की बात, बहुत मुश्किल की बात हो गया राम को। राम जी ने बहुत सोचा, फिर भी ऋषि को प्रार्थना किया, फिर मार्गदर्शन क्या है, ऐसे संकट में हमको दूसरा मार्गदर्शन क्या है। अगस्त्य महर्षि ने उसको ये बताया, जो भगवान ईश्वर ने रावण को ऐसे वर दिया है, अजय वर दिया है, तुम भी ईश्वर को तपस्या करो, उसका साक्षात्कार करो, उसके उससे फिर आप खुद वर मांगो। वो ईश्वर जो आपको वर देने से ही ये आप सफलता होगा, नहीं होने से नहीं हो सकता है। फिर बाद में वो शीघ्र कैसे ईश्वर को दर्शन कर सकता है, ऐसे एक उपदेश दिया, उसको मिरज व्रत बोलता है। तो अगस्त्य महर्षि से जो मिरज व्रत का उपदेश लेकर स्वयं श्री राम जी ने तो ईश्वर के ऊपर तपस्या करता है, ये सारी रामायण में है। तब ईश्वर जी ने उसको साक्षात्कार होकर राम जी को ये बात बताया, हे अर्जुन मेरा पास एक ही वर था, वो अजय वर, वो तो मैं रावण को दे दिया हूं, अभी उसके ऊपर ज्यादा वर है ये नहीं है, मैं कैसे दियो आपको। इसी कारण से तुम रावण के साथ विजय युद्ध करके विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। हे भगवान, मैं ऐसे संकट में, मेरा परिस्थिति क्या है, मेरा सीता का परिस्थिति क्या है, कैसे मैं सीता को वापस लेके आऊं, ये तो पूछा रावण ने, सॉरी राम ने ईश्वर को पूछा। उसी समय में ईश्वर ने ऐसे कहा है राम को, हे राम, रावण मेरा परम भक्त है, बहुत उदारी भी है, एक वचन दिया उसको पालन भी करता है, इसलिए हर एक दिन वो सुबह सुबह सूर्योदय में वो संध्या वंदन करते हैं। तुम्हें जाओ उसी समय के सीधा रावण के पास, तुम्हें जाओ, तुम्हें उसका जाग के उसको पांव पड़ो, उसका शरणागत बन जाओ, तो तब आपको उठाएगा, तो तुम्हें कौन है, क्या चाहिए मेरे से, वो पूछेंगे आपको, वो बोलो मैं श्री राम हूं, मैं रावण के ऊपर युद्ध करना है, तो रावण को हराना है, तो इसलिए मेरे को विजय कंकण धारण करो, ऐसे तुम्हें पूछो ये रावण को, वो सचमुच आपको प्रार्थना वो दे देगा, तब वो खुद ही अपना तपस्या शक्ति से वो आपको विजय कंकण धारण करेंगे, इसी कारण से तुम विजय बन सकता है। ऐसे ईश्वर ने राम को मार्गदर्शन दिया। बाद में ऐसे तो राम किया, वो तो बाद में तो युद्ध हुआ आप जानते हैं, वो तो विजय भी प्राप्त किया। इसी कारण से राम मना तो कृष्ण, कृष्ण मना राम, सेम आत्मा है। राम मना परशुराम, परशुराम मना कृष्ण, कृष्ण मना राम। जो भी जन्म जन्म पुनर्जन्म में आगे पीछे आया वो सेम आत्मा है। वो सेम आत्मा राम बन के ईश्वर को पूजा किया, ईश्वर को तपस्या किया। इधर से हम लोग ये भी मालूम हो गया सभी भक्तगण को, तो ईश्वर का परम भक्त राम है, ईश्वर का परम भक्त कृष्ण है, तो एक ही भगवान है, वही ईश्वर है। खुद ही अपना जो भी बिहेवियर एटीट्यूड, जो भी पुनर्जन्म पिछले जन्म आगे जन्म जो होता है, वो तो वो अपने खुद ही श्री कृष्ण समझो, राम समझो, परशुराम समझो, वो सिखाया। बाद में रामायण का जो राम और रावण का युद्ध भी हुआ, तो विजय प्राप्ति हुआ, तो बाद में वो ऐसे परिस्थिति में दूसरा एक संकट आया उसका राम को, क्योंकि महाब्राह्मण रावण को वो तो हत्या किया, उससे इसी कारण से राम को पाप चढ़ा, तो वो पाप निवारण के लिए श्री राम जी ने रामेश्वर में श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापना किया, पूजा किया, अपना पाप पीड़ा को निवारण किया, निवारण लिया। तो इसी कारण से उधर भी श्री राम समझो, श्री कृष्ण जी समझो, जो अपना भारत देश में भगवान के नाम से विराजमान हो गया है, वो खुद ही अपना कथा से, अपना इतिहास से, अपना स्थल पुराण से वो सिद्ध है, वो तो ईश्वर की परम भक्त है। राम भी ईश्वर का परम भक्त है, कृष्ण जी भी ईश्वर का परम भक्त है। ऐसे ये बात से ही हम लोग ये भी बात को सिद्ध कर सकता है, परमात्मा एक है, वो ईश्वर है, वो तो सभी देवतागण जो है वो तो परमात्मा शिव की भक्तगण है। आप जानते हैं परशुराम को, परशुराम का इतिहास भी आप जानते हैं, जमदग्नि और रेणुका देवी की पुत्र संतान जो है वो एक पुरुष परशुराम भी है। परशुराम कृष्ण का पिछले जन्म का अवतार है, कृष्ण का पिछले जन्म राम है, उसका पिछले जन्म परशुराम है। वो परशुराम की जो कथा है, भले समझो इतिहास है, दंत कथा है, कथा है, जो भी समझो आप, उसमें ऐसी एक घटना आता है वो पितृवाक्य परिपालन के लिए स्वयं श्री परशुराम ने अपना मातृ को वधा किया। इसी पाप परिहार अर्थ के लिए फिर वो ईश्वर को वो पूजा करना पड़ा, वो तो पाप को पाप परिहार लेना पड़ा। इसी कारण से परशुराम अवतार में भी श्री कृष्ण जी ने तो ईश्वर को शरणागत हुआ, ईश्वर को पूजा किया। इसलिए परमपिता परमात्मा ईश्वर ये तो भगवान है, परमात्मा है, परम प्रभु है, विश्व प्रभु है। श्री कृष्ण जी ने परम भक्त ईश्वर को, ऐसे हम लोग इजी से सबको मार्गदर्शन कर सकता है। भले हम इतना स्टोरी हम लोग समझने से भी, ये स्टोरी को बोलने समय में बोलने से भी तो इजी से भक्त लोगों के मन को रियल बात को खोल सकता है। एक एग्जीबिशन बुक भी आए आप लोगों के सामने, कुछ दिनों में आ जाएंगे आपका करकमल में, ऐसी चित्र के द्वारा ये जो भी पुराण की बात होता है उसके द्वारा आपका करकमल में ये ऐसे एक प्रदर्शनी सेट भी आपका हाथ में आ जाएंगे। उसके द्वारा ही हम लोग तो इजी से जो भक्तगण के मन के हर्ट ना हो, प्रेम से पूर्व से गौरव से ही हम लोग इसी बात को सिद्ध कर सकता है। तो ये बात हम लोग बहुत गौरव की बात है। तो भाई बहने, इसके साथ साथ दूसरी भी एक बात है, आज की भी मुरली में ये संकल्प आया, कल को मुरली में भी ये बात था, ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो ज्ञान देने का जरूरत है, क्योंकि विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान ऐसे में बोलते हैं, अपना पुराण भी बहुत बहुत महिमा करते हैं, परंतु वो लोग भी भगवान ईश्वर का भक्त है। हमको पता है शिव अलग है, शंकर जी अलग है, दुनिया में किसी को यह रहस्य पता ही नहीं है, क्योंकि पुराण ऐसे मिक्स करके रख दिया है। हम लोग परमात्मा प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वही परमात्मा है। हम सभी आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये बात को हम लोग इजी से स्पष्टीकरण कर रहा है। इसके साथ साथ ये बात को भी हम लोग स्पष्टीकरण करने का जरूरत है, श्री महाविष्णु भी ईश्वर को पूजा किया है, वो पुराण में है। वो पुराण की कथा ऐसे है, श्री विष्णु का पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी की जो माता और पिता थे, एक्सक्यूज मी उसका नाम इमीडिएट याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताएंगे समय पर, तो उसको पत्नी की जो उसके पत्नी की माना तो मदर इन लॉ जो था विष्णु का, वो तो वो मदर इन लॉ को विष्णु ने हत्या करता है। ये हत्या करने के कारण से वो ऋषि वो जो होता है विष्णु का फादर इन लॉ, वो तो इसको शाप देता है। वो ऋषि का नाम है, बहुत शायद आप सब कोई जान सकता है, बता सकता है, ओके। तो ये इसी कारण से उसका जो चक्र है, स्वदर्शन चक्र था, वो तो चले जाता है उसको। ये फिर स्वदर्शन चक्र को पाने के लिए श्री महाविष्णु ईश्वर को पूजा करता है, 1000 कमल पुष्प के द्वारा ही पूजा करता है। तो इसी समय में 1000 कमल पुष्प में एक पुष्प कम हो जाता है गिनती में, तो विष्णु को मालूम होता है तो हमारे व्रत खराब हो गया। तो इसलिए 999 कमल पुष्प को ईश्वर को अर्पण किया, ईश्वरलिंग को अर्पण किया, बाद में एक पुष्प नहीं था, इसलिए आप आंग, आप खुद विष्णु का अंक को निकाल के नयन कमल को वो लिंग को अर्पित किया। ये तो विष्णु पुराण में है। तो स्वयं श्री कृष्ण श्री विष्णु भी ईश्वर को पूजा किया है। तो इसका भक्ति को मान के परमात्मा शिव जी ने उसको फिर वो चक्र देता है, सुदर्शन चक्र विष्णु को। ऐसे स्टोरीज है, स्टोरी के द्वारा भी हम लोग बोलने से लोग मानते हैं, क्योंकि उसका पुराण है, उसका पुराण से उसका निवारण देना पड़ता है। उसका शास्त्र को हम लोग शस्त्र बना के ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं होने से तो लोग नहीं मानेंगे। तो हमारी डायरेक्ट बोले हम लोगों को समझेंगे ये लोग क्या है, हिंदू धर्म विरोधी है, ऐसे समझेंगे। हम तो हिंदू धर्म के आदि पुरुष है, तो अपना धर्म को हम लोग विरोधी नहीं है, परंतु सच्ची मार्ग दिखाने के लिए भी डायरेक्ट ना बोले, ऐसे कुछ युक्ति से बोल के। तो कृष्ण भी राम भी परशुराम भी विष्णु भी ब्रह्मा भी तपस किए, उसका भी स्टोरीज है। तो शंकर भी आप जानते हैं, शंकर भी तपस्या करते रहता है, वो तो अखंड तपस्वी महायोगी शंकर है, वो तो योगेश्वर ईश्वर है। तो इसलिए ये सारी त्रिमूर्ति भी परमात्मा शिव जी को तो भक्त है। ऐसे जो भी अपना पुराण की महिमा है, पुराण की कथा है, वो संग्रह करके हम लोग कुछ प्रदर्शनी हम लोग बनावे, तो जो बाबा का इच्छा है, कृष्ण भगवान नहीं है, ईश्वर ही भगवान है, बच्चे सिद्ध करो, हमें सिद्ध कर सकता है। इसलिए आप भाई बहनों को मेरा विनंती है, मैं सीडी भी रेडी है, सीडी बनाया है, हिंदी में है, इसको आप लोग ले सकता है, उसको डाल के आप भी फ्लेक्स में उसको प्रिंट करके एग्जीबिशन डाल सकता है। तो सीडी अपना सीडी डिपार्टमेंट में मिल सकता है। तो यही नॉलेज से हम बाबा का सिद्ध कर सकता है, मना भगवद गीता का भगवान ईश्वर है ये बात कृष्ण वाच है। ओके, ओम शांति।